గురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణ లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ సే హమ్ సాత్వే శ్లోక్ కి చర్చా శురు కరేంగే. జైసా హమ్ కహ చుకే హై కి పాంచ్వే సే ఆఠ్వే శ్లోక్ మే శ్రీల రూప గోస్వామి నే మధ్యమ అధికారి కి దృష్టి ఔర్ ఉన్కే ఆంతరిక వికాస్ కా వర్ణన్ కియా హై. ఔర్ ये सातवें श्लोक का विषय है, जैसे कि पहले दिन हमने बताया था, अविद्या विनाश ओ कृष्ण नामे रुचि अनुशीलनेर प्रणाली. अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी उस प्रणाली के अनुशीलन का वर्णन कर रहे हैं जिससे कि अविद्या का विनाश हो जाए और कृष्ण नाम में रुचि जागृत हो जाए. तो यह है इस विषय, इस श्लोक का विषय. और यह भी वसंत तिलक छंद में है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं. स्यात् नाम, क्षमा कीजिए, कृष्ण नाम चरित आदि सिता अपि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिका नो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हन्त्री. स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा. స్వాద్వీ క్రమాద్ భవతి తద్గద మూల హంత్రీ. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్త రసనస్య న రోచికాను किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा. स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूलहन्त्री. हाँ बोलिए.
कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपरत्तरसनस्य नरोचितानो किंवादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमात् भवति तत्तन्मूलहन्त्री कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किंपादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमाद्भवति तन्मूलहन्त्री स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री
माताजी
स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री
ऐसे श्लोकों का उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए और ध्यान से शब्द भेद हर एक शब्द को अलग अलग से पढ़ के उसका अर्थ भी जान लेना चाहिए और संधि का ध्यान भी देना चाहिए। स्यात है कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम पवित्र नाम चरित आदि चरित्र लीलाएं इत्यादि सीता मिश्री अपि यद्यपि अविद्या अज्ञान का पित्त पित्त से उपतप्त पीड़ित रसनस्य जीभ की न नहीं रोचिका स्वादिष्ट नो अहा कितना विचित्र है यह किंतु लेकिन आदरात सावधानी पूर्वक अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहर्निश खलु स्वभावतः सा वह पवित्र नाम रूपी मिश्री एव निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित स्वाद्वी स्वादिष्ट क्रमात् क्रमशः भवती हो जाती है तद गद उस रोग की मूल जड़ हंत्री नष्ट करने वाली। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण का पवित्र नाम चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो किस प्रकार से ये नष्ट होता है, यहां इसका वर्णन इस चार्ट में है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अविद्या और पीलिया इन दोनों की तुलना की गई है। पित्त के विकार से, पित्त के श्राव से पीलिया की बीमारी होती है, ऐसे आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है। अविद्या तो दोनों की तुलना है, एक दिशा में है पीलिया जिससे कि मीठी वस्तु जैसे मिश्री कड़वी लगती है, दूसरी ओर है अविद्या जिसमें कि मधुर हरिनाम में रुचि नहीं आती, हालांकि हरिनाम सुस्वादु और मधुर होता है, परंतु अविद्या के रोग से ग्रस्त जीव उसका स्वाद नहीं ले सकता है। तो जब पीलिया का रोगी होता है, हालांकि उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, यदि वो मिश्री का सेवन करते रहता है तो फिर क्या होता है, पीलिया की बीमारी का निवारण हो जाता है और मिश्री पुनः मीठी लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार से अविद्या से ग्रस्त जो जीव है, जो मधुर हरिनाम का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यदि वो हरिनाम को ही लेते रहता है, हालांकि भले उसे वो कड़वा लगे इस समय, जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, हरिनाम कड़वी लगने पर भी लेते रहें तो अविद्या की बीमारी का विनाश होता है और हरिनाम सुस्वादु लगने लगता है। सुस्वादु होना चाहिए, हा? सुस्वादु लगने लगता है। तो ये सारे इस श्लोक और तात्पर्य का सार इस एक चार्ट में है। अविद्या विनाश ओ कृष्ण नामे रुचि अनुशीलनेर प्रणाली। तो यहां पे ये प्रणाली है, हरि नाम, भगवान श्री कृष्ण के नामों का श्रवण और कीर्तन करना, उनकी लीलाएं आदि के बारे में सुनना बोलना, ऐसे करने से अविद्या का नाश तो होता ही है, साथ साथ कृष्ण नाम में भी रुचि जागृत हो जाती है। ठीक है, लिख लिया आपने? अच्छा, अभी श्लोक देखिए। स्यात्, स्यात् मतलब है, क्या है? कृष्ण नाम चरित आदि सीता, सीता मतलब मिश्री के समान मीठा, तो मिश्री मीठी होती है ना, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम चरित आदि मतलब उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनके उपदेश, उनका रूप, उनके नाम आदि मिश्री के समान मीठे होते हैं। अपि, अपि मतलब हालांकि, तो हालांकि कृष्ण का नाम चरित आदि मिश्री के समान मीठा है, फिर भी अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। अविद्या रूपी पित्त, पित्त का स्राव होने से पीलिया हो जाता है, तो जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री का स्वाद समझ में नहीं आता है सही स्वाद, उसी प्रकार से अविद्या के पित्त से ग्रस्त जो रोगी है उपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, तो उसका स्वाद हरिनाम, मधुर हरिनाम का स्वाद उसे नहीं पता चलता है, तो ये भी कड़वा लगता है। किंतु अगर यदि आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, परंतु जुष्टा मतलब अगर ये हरि, यही हरिनाम, यही स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि, ये कृष्ण नाम चरित्र आदि अगर इनको स्वीकार किया जाए, ग्रहण किया जाए, इनका उच्चारण आदि किया जाए अनुदिनम बार बार अहर्निश दिन भर आदरात बहुत ही सावधानी पूर्वक, तो क्या होता है? स्वादवी क्रमाद भवती, तो इसका स्वाद धीरे धीरे से क्रम से वो मीठा लगने लगेगा। तत् गद मूलहंत्री, तो उस बीमारी को, इस अविद्या रूपी बीमारी को वो मूल से विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द भेद और शब्दार्थ के माध्यम से आपको श्लोक समझने का अभ्यास करना चाहिए, हर एक श्लोक, चाहे वह सुबह के भागवत श्लोक में हो, चाहे कोई गीता का श्लोक हो, या इस प्रकार से आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं वो श्लोक आए, तो ऐसे थोड़ा समय श्लोक को समझने के लिए हमें बिताना चाहिए। तो सारा सार यहां पर लिखा हुआ है, यह है प्रणाली। कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करने से जो कि श्रवण कीर्तन पर आधारित हैं, तो ये हमारी अविद्या की बीमारी नष्ट हो जाएगी, कृष्ण नाम में रुचि जागृत हो जाएगी और कृष्ण प्रेम होने के कारण फिर जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक? कौन पढ़ेंगे? तो इसी चार्ट को या इस पहले परिच्छेद में सारे प्रणाली का सारांश दिया हुआ है, तो इसके आधार पर ये चार्ट किया हुआ है। अब जबकि ये रोग की बात हो रही है तो पीलिया रोग तो हम समझ गए, परंतु वास्तव में मूल रोग क्या है इस जगत में, इसका वर्णन अब आने वाले परिच्छेद में प्रभुपाद जी करेंगे। हाँ पढ़िए।
इस भौतिक जगत में जब कोई मनुष्य कृष्ण भावना की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रूण समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का नित्य दास बने रहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य बलों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे दुराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना मत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता।
ठीक है, घुमाएंगे इसको। अब ये रुग्ण अवस्था और स्वस्थ अवस्था, स्वस्थ्य होना चाहिए ना, स्वस्थ या स्वस्थ भी ठीक है, यही ठीक, स्वस्थ अवस्था। आप में से जो हिंदी में कौन अच्छे हैं, स्वस्थ ठीक है, स्वस्थ्य होना चाहिए, स्वस्थ्य होना चाहिए ना, स्वस्थ ये ठीक है। हाँ ये स्वस्थ ठीक है। रुग्ण और स्वस्थ अवस्था, तो स्वस्थ अवस्था क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये स्वस्थ अवस्था है। लेकिन जब माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है जीव, तो वो रुग्ण अवस्था में आ जाता है। रुग्ण अवस्था का वर्णन क्या है? भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि रखना। स्वस्थ ये यहां होना चाहिए था, उसके नीचे ऐसे होना चाहिए था, पेन का स्वस्थ जीवन का वर्णन है कि स्वस्थ जीवन है क्या? स्वस्थ जीवन है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जब जीव कृष्णदास के कार्य करता है तो वह स्वस्थ होता है, परंतु इस स्वस्थ अवस्था से वो रुग्ण अवस्था में आ जाता है। कैसे? जब वो भौतिक जीव या माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है, रुग्ण अवस्था में वो भौतिक जीवन शैली से में अधिक रुचि रखता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया सर? अच्छा आगे पढ़िए।
यह कृष्ण भावनामक आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अन्य नेताओं द्वारा भ्रांति की मानव समाज के नेता चाहे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी अंधे हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के अनुसार क्योंकि वे जीवन शैली के कारण समस्त तथ्य पर ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे ही वास्तविक धूल और मनुष्य में अधम है। भगवत गीता न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृतक ज्ञान आश्रम भाव मात्रता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मुंह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवत गीता
ठीक है, आगे पढ़िए।
ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते, जिस तरह के पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद नहीं जान पाता।
ठीक है, अच्छा इसको घुमाइए। अभी इस परिच्छेद में अब तक जहां तक हम पढ़ चुके हैं और पिछले परिच्छेद में भी रुग्ण अवस्था के लक्षणों का वर्णन है। तो रुग्ण अवस्था के लक्षण, जैसे एक वैद्य होते हैं तो अलग अलग रोगों के लक्षण वो जानते हैं ना, लक्षणों को देखकर वो पहचान सकते हैं कि ये बीमारी कौन सी है। तो इसी प्रकार से जीव के लिए रुग्ण अवस्था कौन सी है? अविद्या से उत्पन्न होने वाली कृष्ण की विस्मृति। परंतु लक्षण कौन से हैं? लक्षण यह है, पहले माया के आकर्षण माया के आकर्षण के क्या? माया कैसे? माया के आकर्षण को भूलकर माया से आकर्षित होकर, ठीक है, माया से आकर्षित होकर, इधर माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाना। ठीक है, वो पहली बात। अच्छा अच्छा माया की नीचे अगला पॉइंट, नहीं नीचे अगला पॉइंट, बाद वाला पॉइंट। माया से आकर क्या लिखा है? आकर्षित, माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाना, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है माया की मिथ्या शरण को ग्रहण करना। ये सब पॉइंट्स हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही लिए हैं, ठीक है। तीसरा, केवल निराशा की प्राप्ति होती है, दुराश्रय और दुराशा दोनों। दुराश्रय मतलब माया के शरण को ग्रहण करना, दुराशा मतलब बुरी आशाएं रखना। दुराशया ये बहिरर्थमानिनः, जैसे प्रहलाद जी कहते हैं, एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारने का प्रयास करना, क्योंकि वो अपनी त्रुटि क्या है वो समझते नहीं है, तो एक भूल को सुधारने के लिए दूसरा भूल कर बैठते हैं और ऐसे समस्याएं बढ़ती रहती हैं। समस्याओं का हल नहीं होता बल्कि उनकी वृद्धि होती रहती है। अगला लक्षण यह है कि प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को अस्वीकार करना बिल्कुल रुचि नहीं होती। कोई बताते भी हैं कि देखो भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं, अरे किसने देखा है भगवान को, अरे क्यों पालन करेंगे, या अगर विश्वास करते भी हैं फिर भी इच्छा नहीं होती पालन करने के लिए। और अंततः जैसे कि इस परिच्छेद में, अंतिम परिच्छेद में यहां हम पढ़ लिए हैं नेताओं के बारे में, नायकों के बारे में, ये अंधे होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। अंधे कृष्ण भावनाहीन नेता है, अतः सारे समाज में अविद्या का वातावरण ये लोग फैला देते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा लोग नेता लोग जो हैं वो सब आध्यात्मिक अंधकार में हैं, अंधे हैं, कृष्ण भावनाहीन हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने की बात तो दूर है, बल्कि वो अनेक रुकावटें रास्ते में डालते हैं। इसलिए ऐसा एक अविद्या का वातावरण सारे समाज में फैल जाता है। संघर्ष मतलब माया के कड़े नियमों से, प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष करना। हर एक प्राणी यहाँ संघर्ष कर रहा है ना भौतिक जगत में है? और वैकुंठ में कोई संघर्ष नहीं ना, केवल हर्ष है, संघर्ष नहीं। यहाँ हर्ष नहीं है, केवल संघर्ष है। तो ये रुग्ण अवस्था दोनों व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से दोनों दृष्टियों से इनका वर्णन है। व्यक्तिगत रूप से जब बीमारी होगी तो सामाजिक रूप से भी तो होगी ही होगी। हाँ आगे पढ़िए।
किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही क्रिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान को व्यवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, तो भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी तथा मनोयोग से ग्रहण करना होगा। उसके रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है अहंकार को जन्म देती है। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ है, यदि चेतना शुद्ध है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है।
ठीक है, इसको घुमाइए। तो अब तक जो पढ़े हैं ये और एक चार्ट है इसके बारे में। अब दो चीजें हैं, एक है अविद्या। अविद्या का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा।
अविद्या का मतलब आध्यात्मिक पहचान
भ्रांत धारणा। यहाँ प्रभु हम तात्पर्य से ही ले रहे हैं, ठीक है? अभी अभी पढ़ा ना हमने। तो अविद्या का अर्थ है आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा। ऐसी भ्रांत धारणा से क्या होता है? अहंकार हो जाता है। अहंकार का क्या मतलब है? जब जीव सोचता है कि मैं शरीर हूं और उसके आधार पर फिर वो संसार का भोग करना चाहता है। ये अहंकार हृदय में स्थित है। तो जब महामंत्र का उच्चारण किया जाता है नाम संकीर्तन से, हालांकि नाम संकीर्तन भले हमें अच्छा नहीं लगे इस समय, तो महामंत्र के उच्चारण से मन तथा हृदय समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ हो जाते हैं। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। हाँ आगे पढ़िए।
भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में तीन अवस्थाएं हैं, अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जब नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इसमें से 10 अपराध प्रमुख हैं, और यदि भक्त इनसे बच जाता है तो उसके अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावागिनी निर्वापरम कहलाती है। योनि मन संस्थान की प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है कि वह दिव्य जीवन का प्रथा स्वागत कर सकता है।
ठीक है, इसको घुमाइए जरा। तो हरि नाम के नाम कीर्तन में जो तीन अवस्थाएं हैं इनका वर्णन इस परिच्छेद में प्रभुपाद जी ने किया है। पहली अवस्था कौन सी है? अपराध पूर्ण अवस्था, जिसमें हम नाम अपराध करते हैं। प्रमुख 10 नाम अपराध हैं। हर रोज प्रातः काल में मंगल आरती के बाद 10 नाम अपराधों को का उच्चारण हम करते हैं। तो अपराध युक्त या अपराध से पूर्ण जप, ये पहला स्तर है। फिर जैसे जैसे हम अच्छी तरह से करते जाते हैं, यदि हमने सावधानी से इन अपराधों से अपने आप को बचा लिया तो अगले स्तर का दर्शन होगा, जिसमें अपराधों को कम करने की अवस्था कहा जाता है, या अपराध शून्य अवस्था। ये मध्य अवस्था है, बीच की, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच में है ये। और अंततः नाम लेते लेते, अपराध शून्य नाम लेते लेते हम शुद्ध नाम लेने लगते हैं, शुद्ध अवस्था में स्थित होते हैं। और फिर क्या होता है, शुद्ध नाम लेने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं तुरंत भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाते हैं और फिर दिव्य जीवन का रसास्वादन करते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। ठीक है, एक मिनट इसको घुमाएंगे। पहले भी एक बार प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन के उद्देश्य का वर्णन किया था, अब भी यहां कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है, किसी पिछले परिच्छेद में इसी तात्पर्य में प्रभुपाद कह चुके हैं कि सारे विश्व में निपट अज्ञान को दूर करने हेतु ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना हुई है। क्या दूर करने के लिए? विश्व भर में निपट अज्ञान को दूर करने के लिए। तो ये कैसे संभव है, ये अज्ञान को दूर करना कैसे संभव है, क्या किस तरीके से किया जा सकता है? तो यहां पर तात्पर्य के इस भाग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। तो निपट अज्ञान को दूर किया जा सकता है एक ऐसे वातावरण को निर्माण करके जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। ठीक है, क्योंकि यही तो मूल प्रणाली है ना, अविद्या का विनाश करने के लिए और कृष्ण नाम में रुचि प्राप्त जागृत करने के लिए। तो ऐसे वातावरण कैसे निर्माण किया जा सकता है जिसमें कि सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें? तो यहां आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं संकीर्तन मंडलियों के द्वारा, कि विश्व भर में संकीर्तन मंडली भेजकर सब जगह हरिनाम संकीर्तन होता है, नाम ध्वनि, नाम की ध्वनि सब जगह गूंजती है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए।
मनुष्य को श्रद्धा विश्वास के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन में श्रद्धा बढ़ जाए तो वह इस संघ का सबसे मंच अच्छा है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां देखते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुड़ाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों का अनुकरण करने लगते हैं। भले ही अनुकरण नकल हो लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ ही लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
अच्छा, तो अब प्रगति कैसे होती है क्रमशः, इस प्रणाली का वर्णन अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई है श्रद्धा से। संकीर्तन मंडलियां सब जगह जाती हैं, कीर्तन करते हैं, लोग सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होकर फिर क्या करते हैं, संस्था का सदस्य बन जाते हैं, तो आकर्षित हो जाते हैं मंदिर आदि में आने के लिए, फिर महामंत्र कीर्तन आदि करते हैं, कभी कभी नकल भी करते हैं, सर मुंडवा लेते हैं। अच्छी चीज की नकल बुरी नहीं होती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और फिर वो दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पढ़िए।
यदि वह निष्ठावान हुआ तो उसकी दीक्षा दी जाती है, उसको दीक्षा दी जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य 16 बार जप करके और अवैध महसूस मात्र द्रव्य मांसाहार तथा युद्ध क्रिया से अपने को दूर रख करके भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कर्म से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग जाता है, न धूम्रपान करके या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, न ही वह अपना समय चिंतन या युद्ध क्रीड़ा में रहता है। इस तरह से यह समझना चाहिए तो वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, अच्छा अच्छा घुमाइए। तो जब संकीर्तन मंडलियां आदि जाती हैं, भक्त लोग आकर्षित होते हैं, वो भक्तों के संग में आते हैं, तो साधु संघ कहलाता है। तो ये सारी प्रणाली है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका वर्णन है, संक्षेप में शायद आप पढ़ेंगे भी, परंतु संक्षेप में क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहां वर्णन किया है तो इसी चीज को चार्ट रूप में हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धा, श्रद्धा से शुभारंभ होता है भक्ति का, अविद्या रूपी बीमारी से दूर होने के लिए। तो फिर वो श्रद्धा से साधु संघ में आते हैं। साधु संघ में क्या होता है, हमारे पड़ाव में आकृष्ट हो जाते हैं, पड़ाव मतलब हमारे कैंप में, हमारे मंदिरों में, संकीर्तन मंडलियों से। और अब ये पॉइंट भी वहां लिख सकते हैं कि हमारे संस्था के सदस्य बन जाते हैं, ऐसा भी लिखिए उसके नीचे, हमारे पड़ाव में आकृष्ट होते हैं और संस्था के सदस्य बन जाते हैं। संस्था का सदस्य बनना अर्थात, नहीं नहीं तो क्या अन्य लोग नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते? अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मचारी भावनामृत संघ, ऐसा है संस्था का नाम। हाँ, आकृष्ट होते हैं। और ये भी लिख लीजिए, हमारे संस्था के सदस्य बन जाते हैं। ये जीवन सदस्य की बात नहीं, लाइफ मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो भक्त हो जाते हैं उनकी बात हो रही है। अधिकतर हमें इस्कॉन में सदस्य नाम सुनकर 14,400 जितने भी रुपए का स्मरण आता है, लेकिन इस प्रकार के सदस्य की बात नहीं हो रही यहाँ पर। फिर साधु संघ में आते हैं, जैसे तात्पर्य में लिखा है ठीक वैसे हमने यहाँ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो साधु संघ में आते हैं, सदस्य बन जाते हैं और कीर्तन आदि के द्वारा फिर दीक्षा के योग्य हो जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद गुरु के निर्देश पर फिर वो भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया क्या है? ये भगवान की सेवा है, जैसे कि जप करना, कीर्तन करना, भागवत पढ़ना और सुनना आदि। फिर वो चार नियमों का पालन करना, ये भी भजन क्रिया के अंतर्गत आता है। भजन क्रिया की अवस्था में व्यक्ति की श्रद्धा निष्ठा थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए होटलों में खाना बंद करता है, वर्जित आहार जैसे मांसाहार आदि ग्रहण करना भी बंद कर देता है। और जैसे जैसे भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्त होते जाता है भक्त, भजन क्रिया करते करते, तो वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर पहुंचता है। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है? अवांछित वस्तुओं से भक्त मुक्त हो जाता है। अवांछित चीजें कौन सी हैं विशेष करके? जो हमारे हृदय में स्थित दुर्गुण हैं, बुरी आदतें हैं, दुराशाएं हैं, उन सब से हम मुक्त होने लगते हैं अनर्थ निवृत्ति के स्तर में। फिर जैसे जैसे हम कीर्तन करते रहते हैं तो अगले स्तर पर पहुंचते हैं जिसे निष्ठा कहते हैं। इस निष्ठा के स्तर में कृष्ण कार्यों को करने में स्थिरता हो जाती है। अच्छा, यहां जो चार्ट है क्रम से बताया गया है, इसका क्या मतलब है? पहले श्रद्धा है, फिर साधु संघ। साधु संघ में आ जाते हैं तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, फिर साधु संघ से भजन क्रिया, तो भजन क्रिया करते हैं तो साधु संघ की आवश्यकता नहीं, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन क्रिया की आवश्यकता नहीं। यही है ना अर्थ? ये सारे कार्य जब अगले स्तर पे जाते हैं तो पिछले स्तर के कार्य भी जारी रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब अगले स्तर पे चले गए तो पिछले स्तर जो है पिछले स्तर के कार्य हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो और भी तीव्र हो जाते हैं, बल्कि उन्हीं कार्यों को हम और भी श्रद्धा से करते हैं, ठीक है।
आगे नहीं,
आगे है श्रद्धा से साधु संघ। जब साधु संघ में आते हैं तो श्रद्धा बढ़ जाती है, साधु संघ करके साधु संघ के अंदर हम भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया के अंतर्गत साधु संघ और भी बढ़ता है, श्रद्धा और भी बढ़ती है। भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति के स्तर में आते हैं तो भजन क्रिया और भी तीव्रता से करते हैं, साधु संघ अधिक करते हैं, श्रद्धा भी बढ़ जाती है। अनर्थ निवृत्ति से जब निष्ठा के स्तर तक पहुंचते हैं तो जितने भी अन्य चीजें अनर्थ निवृत्ति और भी तीव्र हो जाती है, भजन क्रिया भी तीव्र हो जाती है, अन्य जितने भी स्तर के कार्य हैं वो सब और तीव्र हो जाते हैं। अवांछित वस्तुओं से मुक्त होना ये अनर्थ निवृत्ति के स्तर की पहचान है। अवांछित वस्तुएं मतलब हमारे हृदय के अंदर जो दुर्गुण हैं, दुराशाएं हैं, बुरी आदतें हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ। हमें याद रखना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति के स्तर में 100% अनर्थों का निवारण नहीं होता है, परंतु प्राय हो जाता है। प्राय मतलब ऑलमोस्ट फुली, प्राय पूर्णतया, प्राय हो जाता है,
करीब करीब।
ठीक है। ऐसा कीजिए, आप में से जो लिखने में अच्छे हैं ड्राइंग में, आप 7 गोलाकार बनाइए, एक के अंदर एक के ऊपर एक, एक एक ऐसे एक, फिर एक, फिर तीसरा ऐसे 9, समझिए, एक फिर एक, एक सेंटर एक ही होना, 9 9। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा करिए, पूरे बोर्ड में चले जाए तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, और नहीं लिखना है कुछ अंदर। हाँ ठीक है, अच्छा तो किसको चार्ट पे घुमाइए, लेकिन निष्ठा में बात रुकती नहीं है ना। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, अब निष्ठा तक बात यहाँ, तो आगे पढ़िए फिर आगे की बात यहाँ। हाँ पढ़िए आप।
जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अर्थात अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है।
स्थिर हो जाता है मतलब निष्ठा के स्तर में आ जाता है। ठीक है,
वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है।
हाँ, वास्तव में एक रुचि, एक स्तर और है बीच में, जो रुचि और आसक्ति, तो आसक्त हो जाता है जब वो कहते हैं, तो आसक्ति की अवस्था है, परंतु आसक्ति के आगे रुचि की अवस्था भी है जिसका वर्णन नहीं किए हैं, परंतु वो है ऐसा स्तर। हाँ ठीक है,
यह भाव कहलाता है, यह भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष है। इस तरह भक्त जीव संसार से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना में प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावना में अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त होता है और क्रमशः और प्रकाश में रह जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तब नहीं करता, जैसा कि चैतन्य चैतन्य मध्य 22-31 में पुष्टि हुई है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताना ना ही माया का अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश धूप से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जब धूप होती है तो अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावना मत को ग्रहण करता है कि माया का अंधकार तुरंत ही लुप्त हो जाता है।
ठीक है, तो इसको घुमाइएगा। तो निष्ठा के बाद फिर क्या है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, निष्ठा के बाद है रुचि। हालांकि यहाँ तात्पर्य में इसका उल्लेख नहीं है, वो निष्ठा है, स्थिर हो जाता है मतलब निष्ठावान हो जाता है, वो निष्ठा के स्तर की पहचान है। फिर रुचि, उसके बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब कृष्ण कार्यों से आसक्त होना, यहां प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इन कार्यों से आसक्त हो जाता है कृष्ण, और कृष्ण कार्यों से भक्त आसक्त हो जाता है, तीव्रता से आसक्त हो जाता है। तो इन सब स्तरों का वर्णन विस्तार में भक्ति रसामृत सिंधु में है, लेकिन भक्ति शास्त्र के दौरान शायद इतने गहराई में ये पढ़ाया नहीं जाएगा। उसके बाद भाव की अवस्था में भक्त पहुंच जाता है, भाव के लक्षण क्या है? पहली बात, दिव्य उल्लास का अनुभव करना। जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो भाव भक्ति के लक्षण पढ़ेंगे विस्तार में। उल्लास का अनुभव करना, यहां इस तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी भाव के बारे में कह रहे हैं उसको यहां पे चार्ट में लिखा गया है। दूसरी बात, कृष्ण प्रेम का ये प्रारंभिक उन्मेष है। उन्मेष, उन्मेष जागृत होना, उन्मेष प्रारंभिक जागरण समझ लीजिए, अंकुरित अवस्था। अभी लिखना है, ठीक है, आप बैठे दो मिनट में। फिर तीसरा लक्षण यहां जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति, साथ साथ भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित होना, यह भी भाव भक्ति का एक लक्षण है। पूर्ण समझ हो जाती है कि भगवान कौन है और माया क्या है, और ऐसे अवस्था में माया से भक्त विचलित नहीं होता है। और उदाहरण है, कृष्ण सूर्य समा, माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। ये सारे भाव के ही लक्षण हैं, ठीक है। एक ही है, एक ही, सब लगभग एक ही है। केवल प्रभुपाद जी यहां अलग अलग वाक्यों में कह रहे हैं, वास्तव में मतलब एक ही है, क्योंकि भौतिक आकर्षण से मुक्त होना यही तो भौतिक अस्तित्व से मुक्त होने की बात है, बात तो एक ही है। अच्छा, पहले हम चर्चा कर चुके थे ना, फिर अंत में भाव के बाद है कृष्ण प्रेम, प्रेम की अवस्था। हालांकि यहां प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं प्रभुपाद जी, परंतु ये अंतिम लक्ष्य है। पहले हम सुन चुके हैं कि भक्ति तीन प्रकार के होते हैं, ये भक्ति के तीन स्तर होते हैं। कौन से हैं वो तीन प्रकार के? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो यहां बताइए कि साधन भक्ति कहां तक होती है? आसक्ति तक, क्योंकि बाकी दो क्या है, भाव और प्रेम, तो रह क्या गया? सरल है ना, तो श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक ये साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति करके हम आसक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इनके नंबर दे दीजिए आपके खाते में। कृष्ण प्रेम 9 नंबर, फिर पीछे आके 8, 7, 6 ऐसे करते जाइए। ठीक है, तो अब ये बताइए ये 9 गोलाकार क्यों किए हैं? अच्छा, क्या इसका क्या मतलब है?
कैसे कैसे
आप में से कौन आके भरेंगे, ये कौन आके लिखेंगे? सूत्र तो मिल गया आपको, कौन करेंगे? उठिए कोई आइए और भरिए इसको। कौन करेंगे? आके लिखिए बोर्ड पर। आइए लिखिए लिखिए। आओ कौन लिखेंगे? राइटिंग सही लिखा है गलत लिखा है? आप में से कितने भक्त सोचते हैं सही है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त कहते हैं गलत है? क्यों गलत है? तो कृष्ण प्रेम अगर बीच में रहेगा तो श्रद्धा में कृष्ण, तो कृष्ण प्रेम में श्रद्धा नहीं है, या कृष्ण प्रेम में श्रद्धा नहीं है? बड़े बड़े श्रद्धा तो सब जगह है,
स्टार्टिंग पॉइंट तो
श्रद्धा है,
उसके अंदर सब चीज आ रही है, श्रद्धा के ऊपर कवरिंग।
ठीक है, बढ़ते जाइए। कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा गोलाकार इसलिए है कि कृष्ण प्रेम के अंदर ये सब हो जाता है, साधु संघ है, श्रद्धा है ना, अनर्थ निवृत्ति है, सब है, अनर्थों का निवारण है, सब कुछ है। केवल इतना है कि श्रद्धा की मात्रा बहुत लेकिन कृष्ण प्रेम में श्रद्धा की मात्रा बहुत बड़ी होती है, सबसे अधिक। श्रद्धा तो बढ़ती रहती है पूर्ण श्रद्धा। ठीक है, धन्यवाद। तो भी श्रद्धा के बाद साधु संघ, तो साधु संघ का बड़ा गोलाकार होने का क्या कारण है? क्योंकि साधु संघ में तो श्रद्धा चाहिए, साधु संघ का आधार है श्रद्धा। थोड़ी श्रद्धा है तब तो आए हैं ना हम साधु संघ में, तो साधु संघ से फिर हम श्रद्धा से फिर हम साधु संघ में आते हैं, थोड़ी सी श्रद्धा फिर साधु संघ में आते हैं। जैसे साधु संघ में आते हैं श्रद्धा बढ़ जाती है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो चार्ट है ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अंदर श्रद्धा भी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। लेकिन इसलिए इस दृष्टि से कहा गया है कि हर आगे प्रगति करते हर स्तर में जो निम्न श्रेणी का स्तर है उसके सारे गुण रहते हैं, बल्कि वो भी और तीव्र हो जाते हैं। साधु संघ से भजन क्रिया, जब भजन क्रिया करते हैं तो साधु संघ करते हैं ना, श्रद्धा भी होती है बल्कि बढ़ जाता है। फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वास्तव में ये सारे गोलाकार बड़े होते जा रहे हैं, समझ रहे? जब
ये अगर यहाँ से इसको 36 में फैलती जा रही है,
उसका अंतिम अंतिम भी खोल दीजिए उसको, उसको हाँ खोल दे खोल दे, क्योंकि प्रेम भी बढ़ता रहता है, कृष्ण प्रेम भी अनंत रूप से बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रेम पहुंचने तक बस हमारा प्रेम वहीं तक रह जाएगा, हाँ वो भी खुल जाएगा आगे और बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है कृष्ण प्रेम। गोलोक वृंदावन में जाके भी ऐसा नहीं कि रुक जाता है, और बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है। तो ये सारे जो गोलाकार है ना कृष्ण प्रेम के, ये बढ़ते रहते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये बस जैसे है वैसे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं हर एक गोलाकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने। कोई साधारण ये गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो ये कृष्ण प्रेम की अवस्था संक्षिप्त रूप में ये प्रणाली है। और कृष्ण प्रेम की अवस्था में शुद्ध नाम का उच्चारण हो जाता है। तो साधन भक्ति के लिए साध्य है भाव भक्ति, और भाव भक्ति के लिए साध्य है क्या? साधन भक्ति के लिए साध्य है भाव भक्ति, भाव भक्ति के लिए साध्य है प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति। ऐसे रूप गोस्वामी पाद ने भक्तिरसामृत सिंधु में वर्णन किया है, वो आप पढ़ेंगे आगे चल के। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भिदा, कृति साध्या भवेत साध्य भावा। जो हमारी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है भगवान की, जो इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है वो साधना भिदा, जो साधन भक्ति कहलाती है। और साध्य भावा, और ऐसे साधन भक्ति का साध्य क्या है? भाव भक्ति। तो साधन भक्ति की परिभाषा ही ऐसी है। तो साधन भक्ति का साध्य है भाव भक्ति, और भाव भक्ति का साध्य है प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति का साध्य है, वो तो साध्य ही है, वो तो साध्य अवस्था ही है, सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था है वो। लेकिन और प्रेम, अधिक प्रेम, ये तो प्रेम के अंतर्गत आ जाते हैं, ये प्रेम के सब डिविजन्स हैं। जैसे हर एक भाव में भी कितने सारे और लक्षण होते हैं, लेकिन वो सब प्रेमा भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये विशेष करके जो 9 स्तर हैं ये मूल रूप से हैं। हाँ वो सही बात है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में साधारण चीजें उनसे ये प्राय नहीं होता, प्राय पहुंच ही चुका है वो प्रेम की अवस्था, प्राय पहुंच चुका है, बहुत ऊंची अवस्था है भाव भक्ति, हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरी तरह से 100% अनर्थों का निवारण नहीं हुआ होता है भाव में, लेश मात्र कुछ रह जाता, इसलिए संभावना रहती है, परंतु प्राय समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में ऐसा कह रहे हैं। तो आगे कृष्ण प्रेम ने भी और अन्य कई की अवस्थाएं हैं, और आगे 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 उनके स्तर हैं, लेकिन वो चर्चा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस श्लोक का या इस तात्पर्य श्लोक का सार क्या है, आप में से कौन बताएंगे? आज के सारे क्लास का सार क्या है? हाँ, परंतु श्लोक उपमा कौन सी दी गई है? हाँ, तो उस उपमा को अपने मिश्रे और कोई बताइए। हाँ माता जी, हाँ किस अवस्था में? मिश्री का स्वाद कैसे होता है? नहीं, वास्तव में स्वाद कैसा होता है? मीठा, लेकिन कड़वा लगता है। उसी प्रकार से हरिनाम तो हरिनाम का मूल स्वाद कैसा है? मीठा है, परंतु क्यों लगता है कड़वा उसे? भव रोग से, अविद्या का रोग उसे हो गया है, तो उसे सुस्वादु हरिनाम भी कड़वा लगता है। फिर
हाँ
बहुत अच्छा। तो ये सार है इस श्लोक का और इस तात्पर्य का, ठीक है। कल के श्लोक का चार्ट तो हो गया ना? किसके लिए? तो दिए थे ना वो छह पॉइंट, छह चेतावनी, छह चेतावनी चार्ट, अंतिम चार्ट तो वही था। हाँ, छह चेतावनी का चार्ट है ना। बल्कि यहाँ वो एरो कर दीजिए, सब जगह बढ़ता हुआ, इसको ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है। बाहर से अंदर से लेकर वो बाहर की ओर, अंदर से लेकर पूरे बाहर की ओर, हाँ हाँ पूरा बाहर की ओर एरो कर दीजिए। हाँ हाँ ऐसे, हाँ 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 बस एरो कर दो। हाँ उसी तरह से हर दिशा में, इधर से भी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो कल आठवें श्लोक की चर्चा हम करेंगे, हो सकता है नौवें श्लोक की चर्चा भी कर लें। आठ और नौ, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे।